नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले 3 से 4 वर्षों में अपना खुद का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करेगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा बब्बर खालसा आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमरीकी सैन्य सहायता रोके जाने के बाद यूक्रेन का समर्थन करने के लिए आपातकालीन बैठक की। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में हैदराबाद FC और पंजाब FC के बीच मैच हैदराबाद में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धियों और सफलताओं से दुनिया भर में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत का रुख युग है। प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।
इम्पैक्टफुल गवर्नेंस में बदला है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फला सरकारी स्कीम का बेनिफिट पहली बार मिला। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कीम पहले नहीं थी, स्कीम्स पहले भी थी, लेकिन इस लेवल की लास्ट माइल डिलीवरी पहली बार सुनिश्चित हो रही है। आप अक्सर पीएम आवास स्कीम के बेनिफिशियरीज के इंटरव्यू चलाते हैं। पहले कागज पर गरीबों के मकान सैंक्शन होते थे, आज हम जमीन पर गरीबों के घर बनाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने सहकारी संगठनों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आज देश में सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके अलावा मृदा परीक्षण मॉडल विकसित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए UPI को रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ने के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने सहकारी खेती को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया और सहकारी क्षेत्र में कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के विस्तार के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे AgriStack के उपयोग की सिफारिश की। श्री मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और प्रबंधन संस्थानों में सहकारी पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सफल सहकारी संगठनों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अगले 3 से 4 वर्ष में अपना खुद का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU विकसित कर लेगा। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में AI कोष, AI कंप्यूटर पोर्टल और अन्य AI आधारित पहलों का शुभारंभ करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने एक वर्ष पहले इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी और अब तक देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने 10,000 GPU का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब ये आंकड़ा 14,000 तक पहुंच गया है।
650 GPUs is our biggest supercomputer and this is 14,000 GPUs already in place and this is just the beginning. Every quarter we will add more compute and this will create the opportunities for everybody.
श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूर संचार जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत लंबे समय से सॉफ्टवेयर निर्माण में वैश्विक रूप से अग्रणी देश रहा है और अब हम हार्डवेयर विनिर्माण में भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय दैनिक में अपने लेख में उन्होंने बताया कि इस साल पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार करने के साथ भारत जल्द ही एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वैष्णव के लेख विकसित भारत के लिए डिजिटल राह की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लेख में विस्तार से बताया गया है कि देश डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए अपने डिजिटल भविष्य को किस प्रकार आकार दे रहा है। भारत विश्व स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसंरचना, स्टार्टअप और नवोन्मेषकों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठा रहा है। इंडिया एआई मिशन और एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसी पहल देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है। ये प्रयास 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें आर्थिक विकास, शासन और सामाजिक प्रगति के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाया जाएगा। सरकार ने एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 5 वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक अनुमान के अनुसार देश का एआई उद्योग 2025 तक 28.8 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 45% होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक संयुक्त अभियान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकवादी लजार मसीह को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी मसीह ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी।
महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए नागरिकों को छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव और असमानताओं से मुक्त होना होगा। नई दिल्ली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई भेदभाव न हो।
सबको अधिकार है अपने विकास का और संविधान ने फंडामेंटल राइट्स भी हमको दिए हैं और फ्रीडम्स भी दिए हैं और इसके आधार पर हम ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव न हो। हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इससे बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 आदिवासी युवाओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी युवाओं के साथ बातचीत में श्री राय ने कहा कि देश के उग्रवाद प्रभावित जिलों में काफी विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन जिलों में सड़क और रेलवे का नेटवर्क विकसित किया गया है तथा नए स्कूल खोले गए हैं।
हम 10 वर्षों में बहुत परिवर्तन देखे और बहुत कुछ किया गया है। सड़कें भी गई है, टेलीफोन गया है, नेटवर्क गया है, टेलीविजन का नेटवर्क गया है
और बहुत सारे स्कूल भी खुल रहे हैं। वहाँ यातायात की बहुत जगहों पर ट्रेन भी गई है, बहुत जगहों पर बस भी जाने लगी है, स्कूल भी खुले हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज विशाखापट्टनम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के डिजिटल फुटप्रिंट के स्कोरिंग पर आधारित नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज अस्ताना में कजाकिस्तान के सूचना और संस्कृति उप मंत्री कनात इस्काकोव से मुलाकात की। उन्होंने श्री इस्काकोव को विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 में भाग लेने का निमंत्रण दिया। इस सम्मेलन का आयोजन 1 से 4 मई तक मुंबई में होना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन के साथ समूचे यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपातकालीन वार्ता शुरू कर दी है। जर्मनी के संभावित अगले चांसलर फ्रीडरिश मैर्ट्स और शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने ब्रसेल्स में यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। यूरोपीय नीति केंद्र ने कहा है कि अमेरिका की नीति में हुए बदलावों के बाद यूरोप को अपनी सुरक्षा का स्वयं प्रबंधन करना चाहिए। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को सोमवार को निलंबित कर दिया था। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके कुशल नेतृत्व और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार स्वीकार किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सोनू सूद।
मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.83% की बढ़त से 74,340 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.93% की बढ़त से 22,545 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की मजबूती दर्ज करते हुए 87.11 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया।
और अब खेल खबरें। हैदराबाद में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में हैदराबाद एफसी का मुकाबला पंजाब एफसी से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दूसरे हाफ में पंजाब एफसी 2-0 से आगे है। लखनऊ में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में यूपी वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 7 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले 3 से 4 वर्षों में अपना खुद का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करेगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा बब्बर खालसा आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमरीकी सैन्य सहायता रोके जाने के बाद यूक्रेन का समर्थन करने के लिए आपातकालीन बैठक की। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में हैदराबाद एफसी और पंजाब एफसी के बीच मैच हैदराबाद में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।